जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता मोहिनी रात में मुझे जगाता प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती नींद पर होते योग के विजय माया के होते सहज पर अजय आराम नहीं मिलन चाहते बाबा संग आत्मा खिल जाते अपने कहा रात को अलविदा परवान हुआ क्षमा पे फिदा समय से पहले बाबा जगाते नयन खुलते ही मिलन कराते प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते माया के बंधन स्वयं कट जाते ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी मौसम की मार अब ना डराती सोना अब आराम नहीं माया है नींद अब अमृत नहीं विष का साया है कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है सुस्ती के धुन में बजी माया की लुरी है तप की राह में मन की हेरा फेरी है जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ सकल विश्व को तप से भरता अमृत वेला में तपस्वी जलता संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता नींद की घड़ी अब बीत चुकी है माया की छाया अब मिट चुकी है वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता योग विनी से आलस को राख करता मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे
ओम शांति। एक प्रश्न है, महान विचारों का आधार क्या है? हमारे मन में निरंतर महान विचार उत्पन्न हो, महान विचारों की क्रिएटिव एनर्जी निरंतर मन में हो, उसका आधार क्या है। जीवन परिवर्तन अर्थात विचार परिवर्तन, ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे मन में निरंतर श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होते रहे। क्या ज्ञान की वर्षा कहाँ से आएगी वो? ऐसा हम क्या करें अपने जीवन में जो हमारे मन में निरंतर महान विचार, महान संकल्प, श्रेष्ठ विचार ही उत्पन्न होते रहे। यदि जीवन परिवर्तन विचार परिवर्तन है तो वो महान विचार, वो संसार के जो विचार है उनसे श्रेष्ठ हो, बड़े हो, क्या क्या किया जा सकता है? क्या किया जाए, क्या किया जाए? क्या किया जाए जिससे निरंतर महान विचार उत्पन्न हो? कोई भी उत्तर नहीं। लक्ष्य श्रेष्ठ हो तो विचार महान होंगे। और कुशल भाई, एकाग्रता अगर हो तो महान विचार होगी। और महान स्वमान और श्रेष्ठ इच्छा हो, एम लक्ष्य इच्छा, और बाबा का, बाबा की मुरली। दृष्टि, महान दृष्टि, महान कर्म, महान लक्ष्य, महान सम्मान, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझना और इस समय जीना। और क्या समय का अपमान न करना। और मैं क्यों यहाँ आया हूँ इसके विषय में सोचना। सभी उत्तर सही है। उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ी जा सकती है, जैसे साधा जीवन। यदि जीवन शरीर को सजने और संवारने में लगाया जा रहा है तो सारी ऊर्जा नष्ट हो रही है। और सबसे बड़ा आधार है महान विचारों का अध्ययन। सबसे बड़ा आधार क्या है? अध्ययन, अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन, गंभीर अध्ययन, श्रेष्ठ अध्ययन। क्योंकि संसार में भी हजारों किताबें लिखी गई है पर जो महानता के विचार अव्यक्त मूल्यों में है वो इस संसार की किसी किताब में नहीं है। इसीलिए एक गंभीर साधक निरंतर अध्ययन करते रहेगा ताकि मन में निरंतर महान संकल्प उत्पन्न होते रहे। क्योंकि अव्यक्त मूल्यों से अधिक श्रेष्ठ लिटरेचर इस संसार में और कहीं नहीं है। कवि लिखता है, मुझे कोई कोई मुझको भूमंडल का एक छत्र राजा कर दे, उत्तम भोजन, वस्त्र, बाग, वाहन, सेवक, सुंदर घर दे दे, पर मैं पुस्तक बिना ना इनको किसी भांति स्वीकार करूं, पुस्तक पढ़ते हुए कुटी में निराहार ही क्यों ना मरूं, पुस्तक द्वारा नीति निपुण विद्वानों से बतलाता हूँ, सत्पुरुषों के दिव्य गुणों से अपना हृदय सजाता हूँ, अगम अगाध समुद्रों को भी बिना परिश्रम तरता हूँ, बिना खर्चे के रण में वन में निर्भय नित्य विचरता हूँ, ऐसा श्रेष्ठ पुस्तक है, मैं इससे सुख पाता हूँ, मैं सारा अवकाश का समय इसके साथ बिताता हूँ। कवि लिखता है, ये पुस्तक कौन है? मेरे मित्र है। कटुता नहीं, न कटु कहता है, सदा सुशिक्षा देता है, नहीं छिपाता जो पूछूं और नहीं कुछ लेता है, हंसता नहीं, अबोध जानकर कभी नहीं यह सोता, यदि इसका अपराध करूं कुछ तो भी रुष्ट न होता, इस सुख को मैं छोड़ भला क्यों और सुखों पर ललचाऊं, ईश्वर से भी यह विनय है पढ़ने को पुस्तक पाऊं। राम नरेश त्रिपाठी की यह कविता है जिसमें कवि कहता है, ये पुस्तक मुझे केवल दे दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे मुझे निराहार ही कमरे में रहना क्यों ना पड़े, परंतु ये पुस्तक से मैं सुशिक्षा पाता हूँ, सद्विचारों के साथ रहता हूँ, महान सत्पुरुषों के साथ मैं समय बिताता हूँ। उसी भांति एक दूसरी अंग्रेजी में कविता है रॉबर्ट साउथी की, माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट वेन एवर दीज कैजुअल आईज आर कास्ट, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विथ हुम आई कॉन्वर्स डे बाई डे, वो जो मृत है वो मेरे मित्र है, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड विथ हुम आई कॉन्वर्स डे बाई डे, मैं उनके साथ बात करते रहता हूँ, वो मेरे ऐसे मित्र हैं जो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाते, विद देम आई सीक टेक डिलाइट इन वील एंड सीक रिलीफ इन वो, जब मैं दुखी हो जाता हूँ तो वो मुझे सांत्वना देते हैं, जब मैं खुश होता हूँ तो वो मेरे खुशी में भागीदार बनते हैं, एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील हाउ मच टू देम आई वो, माई चिक्स हैव बीन बिड्यूड विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रैटिट्यूड, और जब मैं ये सोचता हूँ इन किताबों ने मुझे कितना कुछ दिया है, मेरी आंखों में जैसे आंसू आ जाते हैं। अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो, नहीं तो विचार नीचे की ओर जाएंगे, यदि उन्हें ऊपर उठा के रखना है तो महान विचार, महान संकल्प, रोज की मुरली से, अव्यक्त वाणियों से श्रेष्ठ विचार जमा करने हैं, अलग से लिख के रखना है। वो और हमारे विचार एक हो जाए। साधना का आज का 36वां दिन, जर्मन का एक फिलोसोफर काउंट केसरलिंग भारत आया था और उसने अपना ट्रेवलॉग पूरा वर्णन लिखा यहाँ के ट्रैवल का, ट्रैवल डायरी ऑफ अ फिलोसोफर नाम की एक किताब है, इंडियन ट्रैवल डायरी ऑफ जर्मन फिलोसोफर, उसमें उसने एक अद्भुत वाक्य लिखा है, ऐसा लगता है जैसे वो वाक्य प्रिंटिंग मिस्टेक हो, पर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, और वो किताब जर्मनी में, जर्मन भाषा में लिखी गई, बाद में अंग्रेज़ी और हिंदी में भारत में पब्लिश हुई। उसने लिखा है, इंडिया इज़ अ रिच कंट्री वेयर पुअर लिव। भारत एक बहुत अमीर देश है पर जिसमें गरीब लोग रहते हैं। भारत एक बहुत अमीर देश है पर रहने वाले बहुत गरीब है। रहने वालों को अपने देश का ही पता नहीं है। जो इस देश में संभावनाएं हैं, जो महानताएं छिपी हुई है, यहाँ के लोगों को उसके विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये विदेशी लिख रहा है और अपनी भाषा की किताब में लिख रहा है, अपनी भाषा में लिख रहा है, प्रस्तावना में। लोग बहुत अच्छे हैं परंतु सोए हुए लोग हैं। लोग बहुत अच्छे हैं परंतु बेहोशी में हैं। उन्हें पता ही नहीं उनके देशों में कैसे कैसे उसके उनके देश में कैसे महान ग्रंथ हैं, कैसे महान विचार है। महानता की अनंत संभावनाएं अव्यक्त मुरलियों में छिपी हुई है। और जब विचार बदलते हैं तब जीवन बदलता है। और जो हम कहते रहते हैं हमारे संस्कार नहीं बदलते, हमारे संस्कार बहुत कड़े हैं। क्यों? क्योंकि अध्ययन की कमी है। हमारी जितनी डायरियां है उनके पीछे एक चार्ट लिखा होता है ब्राह्मणों की दिनचर्या का। उसमें दोपहर को 2 और 4 के बीच में क्या लिखा है, किसके पास है डायरी? अभी देखो, ब्रह्मा कुमारी इसकी जितनी डायरियां है उसके पीछे एक चार्ट लिखा होता है, 4 से 5 मेडिटेशन, फिर मुरली। उसमें 2 और 4 के बीच क्या लिखा है वो देखो, अभी अभी लाओ इधर। तो ये डायरी है, एक तो इंग्लिश में लिखा होता है, एक हिंदी में लिखा होता है। 2 और 4 के बीच लिखा है सेल्फ स्टडी। और यही जब हिंदी में लिखा जाता है तो उसे कहा जाता है स्वाध्याय। और ये मिसिंग लिंक है। हमारा ज्ञान अर्थात केवल मुरली सुनना और क्लास सुनना है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वेयर इज द सेल्फ स्टडी? स्वाध्याय कहाँ है? हमारा ज्ञान अर्थात मुरली सुनना, क्लास सुनना, नोट्स निकालना, होमवर्क करना और एग्जाम देना, बस सारे ज्ञान की परिभाषा इसी में ही हमने लपेट ली है। पर ज्ञान अर्थात प्रकाश, ज्ञान अर्थात स्वाध्याय, ज्ञान अर्थात सेल्फ स्टडी। आज के महावाक्य, बाप दादा तो अमृत वेले से हर बच्चे का भाग्य देखते रहते हैं कि कितने प्रकार के भाग्य हर आत्मा के नूंधे हुए हैं। अमृत वेला ही भाग्य ले आता है, रूहानी मिलन का भाग्य अमृत वेला ही ले आता है। हर कर्म में अपना भाग्य है। देखते हो तो बाप को, यह आँखें मिली है बाप को देखने के लिए। हमारे देखना और हमारा देखना और संसार का देखना अलग है, हमारा एंगल ही अलग है, हमारी दृष्टि ही अलग है, हमारा दृष्टिकोण ही अलग है। और ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ, उसमें हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। और आत्मिक स्थिति की परिभाषा केवल ये नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और शरीर नहीं हूँ, हमारी दृष्टि और हमारी वृत्ति भी आत्मिक हो जाए। देखते तो हो बाप को, ये आंखें मिली ही है बाप को देखने के लिए। आंखें किस लिए मिली है? बाप को देखने के लिए। कान मिले हैं किस लिए? बाप को सुनने के लिए। तो भाग्य हो गया ना, हर कर्मेंद्रिय का भाग्य अपना अपना है। पाँव मिले हैं किस लिए? कदम पर कदम रखने के लिए। ऐसे हर कर्मेंद्रिय का भाग्य अपना अपना है। तो लिस्ट निकालो कितने भाग्य सारे दिन में प्राप्त होते हैं। बाप को देखा, बाप को सुना, बाप के साथ सोया, बाप के साथ खाया, सब कुछ बाप के साथ करते हो, सेवा की तो भी बाप का परिचय दिया, बाप से मिलाया, तो कितना भाग्य हो गया। तो आज पांच बातें हैं। पहला, पहली बात देखना, दूसरी बात सुनना, तीसरी बात चलना, चौथी बात खाना और पांचवी बात सोना। आंखें आत्मा की खिड़की है। ये आंखें अदृश्य को देखती है और यही भाग्य है। जब दृष्टि दिव्य हो जाए, एक और प्रश्न है सभी से, हमारी दृष्टि कैसे हो जब हम दूसरों को देखते हैं? वो उत्तर ना दो जो हमेशा देते हो, कुछ और बताओ। हमारा आत्मा को कैसे देखें? कैसे देखें? हर एक आत्मा को उसके अंतिम संपूर्ण स्वरूप में देखना है। कैसे देखेंगे सबको? उसके अंतिम स्वरूप में। वर्तमान के संस्कार देखना ही नहीं है, वर्तमान वो क्या करता है, क्या बोलता है, उसको उसके अपने अंतिम स्वरूप में देखना है। और अंतिम स्वरूप कैसा है उसका? बहुत महान, बहुत श्रेष्ठ, जिसमें कोई दोष नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कोई कमी नहीं, उसके उस स्वरूप में देखना। आत्मिक स्थिति में दृष्टि भी आती है, आत्मिक स्थिति में इस देह के प्रति वैराग भी आता है, आत्मिक स्थिति में इस संसार के प्रति धीरे धीरे साक्षी भाव उत्पन्न हो, इस संसार की घटनाएं हमें प्रभावित ना करें, तो ही साक्षी भाव हमारा प्रबल होगा। यदि इस संसार की हर छोटी घटना हमें प्रभावित करती है तो साक्षी हम कैसे रह पाएंगे? तो आत्मिक स्थिति अर्थात दृष्टि आत्मिक, वृत्ति आत्मिक, संसार के प्रति साक्षी भाव, देह से जो चिपकाव है, देह से जो लगाव है, हमारी एनर्जी शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण करने में ना खर्च होती रहे सारे दिन भर, तो जब दिव्य दृष्टि हो जाए तब भाग्य का दरवाजा खुलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखना। सबको कैसे देखेंगे? उनके अंतिम स्वरूप में। और अंतिम स्वरूप कैसा है सबका? क्या उसमें कोई दोष है? नहीं, महान स्वरूप है। वर्तमान में दोष है, बहुत लड़खड़ा रहे हैं, दूसरा सुनना, कान किस लिए मिले हैं? जब हम सुनते हैं तो केवल शब्द नहीं सुनते, शब्दों के साथ जुड़े हुए प्रकंपन भी हमारे हृदय में उतरते हैं, और जब हम भगवान की वाणी सुनते हैं तो परमात्मा प्रकंपन हमारे कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं। उसकी वाणी भीतर गूंजे, रिसाउंडिंग, रेजोनेटिंग वॉइस ऑफ द लॉर्ड। उसकी वाणी जब कानों से टकराए तो प्रकंपन उत्पन्न होते। निर्भर इस पर है कि हम कितना एकाग्रता से सुन रहे हैं। एक छोटे से शब्द में ही परिवर्तन छिपा हुआ है। जब भगवान को सुनते हैं तो क्या होता है? आत्मा को पंख मिल जाते हैं। मुरली सुनना अर्थात उड़ना। तो दूसरा है सुनना। तीसरा है चलना। संसार जब चलता है उसे चलना या दौड़ कहते हैं, पर हमारा चलना केवल चलना नहीं है, जिस स्थान पर हम जाते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। हमारा चलना केवल किसी स्थान पर पहुंचना नहीं है, हमारा चलना जीवन की दिशा निर्धारित करता है। कदम उसी ओर जाते हैं जहां मन हो, किन लोगों से मिलते हैं, किन स्थानों पर जाते हैं। क्या कहा कदम के लिए बाबा ने, कदम पर कदम। कदम अर्थात संकल्प, कदम अर्थात दृष्टि, कदम पर कदम, कदम अर्थात संस्कार, कदम अर्थात बोल, कदम अर्थात कर्म, कदम अर्थात संबंध संपर्क, सब कुछ कदम पर कदम। लयबद्धता। आर्मी में एक नियम है, यदि एक आर्मी का कैंटोनमेंट है, यदि एक आर्मी का ग्रुप है और उसे एक पुल के ऊपर से गुजरना है, और आर्मी के जो सिपाही जब भी चलते हैं तो कैसा चलते हैं, ठक ठक ठक, एक लय होता है उसमें। परंतु जब पुल से गुजरना है तो उनको कहा जाता है इस लय को तोड़ दो, नहीं तो पुल टूट गए हैं। उस ध्वनि से, उस ध्वनि में इतनी शक्ति होती है। यदि एक जैसी ध्वनि हो, तालबद्धता हो, रिदम हो उसमें, तो उस रिदम से एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि पुल भी टूट गए। इसलिए जब भी आर्मी पुल से गुजरती है तो वैसे नहीं गुजरती जैसे वो ड्रिल करते समय, अभ्यास करते समय करते हैं, क्योंकि ध्वनि में बहुत शक्ति होती है। ऋषियों को क्या कहा हुआ है भारत दर्शन में, मंत्र दृष्टा। उन्होंने मंत्र उत्पन्न नहीं किए हैं, मंत्रों का जन्म हुआ है अपने आप। और उन मंत्रों में क्या होता था, बहुत ऊर्जा होती थी, बहुत शक्ति होती थी। एक एक मंत्र में बहुत अद्भुत शक्ति होती है, छिपी हुई शक्ति। ध्वनि में शक्ति है। तो चलना तालबद्धता, कदम पर कदम। और कदम केवल स्थूल कदम नहीं, सूक्ष्म कदम। जहां हम जाए वो स्थान क्या बन जाए, तीर्थ। सला कल्प तरुण चे आरव चेतना चिंता मणिन से गाव बोलती जे अरणव पीयूषा चे। गीता का मराठी ट्रांसलेशन हुआ है ज्ञानेश्वरी। उसमें लेखक या कवि लिखता है, सला कल्प तरुण चे आरव। ये जो संत है, ये जो महान आत्मा है, वो कौन है? जैसे जंगल है, किसका, कल्प वृक्ष का जंगल। एक ही कल्प वृक्ष यदि मिल जाए किसी को तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। ये चलता फिरता क्या है, एक जंगल, किसका, कल्प वृक्ष का जंगल। चेतना चिंतामणि से गाँव, एक चिंतामणि यदि मिल जाए तो सारी चिंताएं दूर हो जाती है। ये तो पूरा गाँव के गाँव है। बोलती जे अर्णव, उनके मुख से जो निकलता है वो क्या निकलता है, अर्णव, वो अमृत है। पीयूषाचे, पीयूष है वो, पसायदान। चौथा है खाना। संसार के लोग भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। उनका खाना बोझ है, हमारा खाना वरदान है। उनका खाना विस्मृति है, हमारा स्मृति है। तो खाओ भी कैसे, बाप के साथ। और लास्ट है नींद। हमारा नींद भी योग का एक हिस्सा हो। हमारी नींद क्या हो? योग का एक अभिन्न अंग। सोना अर्थात सीधा कोमा में नहीं चले जाना है, टोटल बेहोशी, पता ही नहीं चलता है 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे या 10 घंटे, नींद ही नींद। कल भी एक बहन आए थे, वो कह रहे थे इतनी नींद आती है कि क्या बताऊं, अभी बाहर ही ओपीडी के बैठे बैठे भी सो गई। दोपहर में जब सोते हैं तो 4 घंटे के बाद ही नींद खुलती है। तो हमने कहा सो जाओ, तो कहते नहीं सेवा भी तो करनी है, और दीदी फिर डांटती है इतना क्यों सोती हो, अपनी जांचें करा लो सारी। जांच करा ली, सब नॉर्मल, नींद भी एक कंडीशनिंग है। हमने एक प्रोग्राम क्रिएट नहीं किया है नींद के लिए, इसलिए वो अपना रास्ता खुद चुनती है। एवरीथिंग नीड्स प्रोग्रामिंग। हम डिसाइड करें कि यदि हमने ये सोच लिया कि मेरी 2 घंटे में ही मेरी थकान मिट जाएगी तो वैसा होगा। यदि हम ये सोचें कि 8 घंटा तो मुझे चाहिए क्योंकि 2 दिन से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, 2 दिन से मैं लगातार सेवा कर रहा हूँ, अभी मुझे छुट्टी चाहिए। लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं 4 दिन के लिए और उसके बाद में छुट्टी लेते हैं 15 दिन की आराम की। यहाँ पर भी आराम ही कर रहे थे पर अभी थकान बहुत है, पूरा नॉर्मल आने के लिए 1 महीना लगता है। ऑपरेशन था एक छटाक भर का और आराम किलो भर, तो भी पूरा नहीं होता है। क्यों? माइंड। जीवन का हर क्षण भाग्य बन जाए। तो 5 बातें हैं जो कि निरंतर हो रही है। देखना दिव्य हो जाए, सुनना महान विचारों को सुनो, नोट्स निकालो, और जो निकाले हुए नोट्स है उसको क्या करो, फिर रख मत दो, उसको फिर रिवाइज करो। नहीं तो नोट्स निकालने का फायदा क्या, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी तक इतनी शार्प नहीं है कि एक बार सुन लिया और पढ़ लिया और परमानेंट अंकित हो गया। क्या चाहिए उसको? रिविजन। बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार पढ़ते रहो। और जो हमारे अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स होते हैं, भले कितने ही खराब हैंडराइटिंग क्यों ना हो, परंतु उसमें उसको पढ़ने का सुख ही कुछ और है। इसलिए एक डायरी हो, एक पेन हो, पेंसिल हो, स्टूडेंट लाइक एटीट्यूड, और लिखो। कोई क्लास भी सुनते हो, कोई भी, उसमें 3-4 पॉइंट तो लिख के रख देने हैं उसके। हो सकता है वक्ता की बातें हमारे अंदर नहीं उतरती या अच्छी नहीं लगती या वी डोंट अग्री, क्योंकि वो उसके अपने विचार है, ठीक है, 3-4 बातें तो होगी, कुछ तो होगा जो हमारे काम का हो। वो 2 या 3 पॉइंट्स लिख लो, जेब में रख दो या पर्स में, और फिर किसी दूसरे समय पर उसे निकालो और पढ़ो। जैसे कल हम एक दादी का क्लास सुन रहे थे, उसमें था कि द्वापर से राजाओं का पतन कैसे हुआ, तो हम सोच रहे थे पूरा दिन भर इसका क्या उत्तर हो सकता है, और कई सारे उत्तर निकले, बहुत सारे। द्वापर से, या कहो जब ब्रिटिश थे तब, क्योंकि तभी से राजाई समाप्त होने लगी। क्यों, क्या ऐसा किया राजाओं ने या ब्रिटिश सरकार ने कि राजाएं धीरे धीरे फिर लुप्त हो गए? तो ये एक चिंतन का विषय है, उसको ले लो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसमें आया एक पढ़ते पढ़ते, डलहौजी का, कि यदि कोई राजा बिना अपने वंश के मरता है, जैसे झांसी में हुआ, अवध में हुआ, अयोध्या में हुआ, नागपुर में हुआ, अगर कोई राजा मरता है उसका वंश नहीं, तो वो पूरा राज्य सीधा ब्रिटिश के अंदर चला जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये भी एक कारण रहा कि राजाई समाप्त हुई। ऐसे अनेक कारण हैं। तो क्या करना है, इनका चिंतन। तो आज देखना, सुनना, चलना, खाना और सोना, ये पांच सूत्र, पांच पॉइंट्स हैं। और आज के दो ही होमवर्क लिए हैं इसमें से। पहला होमवर्क, जहां आप सोते हैं उस बिस्तर का एक फोटो निकालना है। एक ड्राइंग, और उस बिस्तर के पास लिखना है, मैं परमात्मा की गोद में सोता हूं। यदि खुद सोए हुए हैं तो किसी और को फोटो निकालना पड़ेगा या तो खुद ही अपने बिस्तर का फोटो, क्योंकि ये जो बिस्तर है महानता को जन्म देता है तो विकार को भी जन्म देता है। इसके लिए उसके प्रकंपन श्रेष्ठ हो। बिस्तर कैसा है, सामान कितना है उस पर रखा हुआ है, सिलवटें कितनी हैं, तकिया कहाँ है, सोए थे तो कहाँ थे और उठे तो कहाँ थी। टोली रखी है या और कुछ। तो वर्क ऑन योर बेड, बेड टाइम रिचुअल। मोबाइल देखते देखते सोते हैं, बात करते करते सोते हैं, क्या करते हुए सोते हैं। तो आज का नाइट फॉर्च्यून ड्राइंग, उसमें लिखेंगे मैं परमात्मा की गोद में सोता हूँ, आई स्लीप इन गॉड्स लैप, और उस बेड का फोटो, और नीचे ये लाइन देखेंगे हाथ से या तो टाइप करके, खाली बेड या खुद सोए हुए। दूसरा होमवर्क आज का, फूड मंत्रा राइटिंग। ये एक मंत्र है, इसको 10 बार लिखना है। इस निवाले में बाबा की याद समाई हुई है। क्या लिखेंगे, इस निवाले में बाबा की याद, एवरी बाइट हैज गॉट्स रिमेम्बरेंस इन इट। हर बाइट में, हर मॉर्सल ऑफ फूड में, हर निवाले में क्या है, हर गिट्टी में बाबा की याद समाई हुई है। इस वाक्य को कितनी बार लिखेंगे, 10 बार। तो ये दो आज के कार्य है, आज के 10 प्रश्न भी। मुरली है 5/10/87 की। पूरी मुरली भी अगर ना पढ़ सको तो ये जो 10 प्रश्नों की 10 लाइनें हैं, इसको मास्टरी, इस पर मास्टरी करनी है। केवल एग्जाम के लिए नहीं, जीवन परिवर्तन के लिए, केवल एग्जाम के लिए नहीं, महान चिंतन के लिए, श्रेष्ठ चिंतन के लिए। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, विथ हुम आई कॉन्वर्स डे बाय डे, विथ हुम आई सीक रिलीफ इन वो एंड सीक डिलाइट इन वील। माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट वेन एवर दिस कैजुअल आइज आर कास्ट। कभी लिखता है कि मैं बस उन्हीं के साथ रहता हूँ, उनके साथ ही रहना मुझे अच्छा लगता है। किसके साथ रहना अच्छा लगता है, किताबों के साथ रहना अच्छा लगता है। और जब मैं सोचता हूँ, मैं चिक्स हैव बीन बिड्यूड विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रैटिट्यूड, मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि इन किताबों ने मुझे कितना कुछ दिया है। सच्चे दोस्त है मेरे ये, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विथ हुम आई कॉन्वर्स डे बाई डे। दिन रात मैं उन्हीं से बात करता हूँ, दिन रात मैं उन्हीं के सानिध्य में रहता हूँ। बाकी दोस्त तो धोखा देते हैं, ये ऐसा दोस्त है, क्या लिखा हिंदी कविता में, जो कभी मुझे धोखा नहीं देते, मुझसे रुष्ट नहीं होते। धरती का चाहे साम्राज्य मुझे दे दिया जाए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे किताब दे दो भगवान। पहला प्रश्न, संतुष्ट मनिया ही बाप दादा की डैश बनती है। पहला सिर का दर्द, संतुष्ट मनिया ही बाप दादा के सिर का दर्द। दूसरा ऑप्शन सिमरन की माला, किसके सिमरन की माला बनती है संतुष्ट मनिया? भक्तों के सिमरन की माला। तीसरा राज्य अधिकारी और चौथा गले का हार, उत्तर गले का हार। मुरली के महावाक्य है, संतुष्ट मणियों की चमक चारों ओर फैलती है और जो असंतुष्ट मणियां है उनकी भी चमक चारों ओर फैलती है। कमरे में एक व्यक्ति एक माता है जो अतृप्त असंतुष्ट है, जो कहती है खिड़की ठीक नहीं है, यहाँ के पर्दे ठीक नहीं है, यहाँ का मौसम ठीक नहीं है, या पानी सही से नहीं आता है, तो उसके वाइब्रेशंस भी दूसरे तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। हमको जाना चाहिए और कंप्लेंट करनी चाहिए कि हमारा कमरा बदल के दो, ये डिपार्टमेंट ठीक नहीं, ये बॉस ठीक नहीं, ये इंचार्ज ठीक नहीं, ये बहन ठीक नहीं, ये साथी ठीक नहीं, ये जूनियर्स ठीक नहीं, ये स्टूडेंट ठीक नहीं, ये सेंटर ठीक नहीं, ये रिट्रीट सेंटर ठीक नहीं, ये गीता पाठशाला तो बिल्कुल ही फालतू है, हमें कुछ दूसरा दे दो, हमें कुछ अच्छा वाला चाहिए। और अच्छे की खोज वाले भटकते ही रहते हैं और उन्हें कभी मिलता ही नहीं। स्वयं भी डिस्टर्ब और दूसरों को भी डिस्टर्ब करना, इसको क्या कहेंगे, आत्मिक स्थिति या संतुष्ट मणि? संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के डैश बनती है, उत्तर गले का हार। दूसरा, संतुष्टता का डैश सर्व प्राप्तियां है और असंतुष्टता का डैश स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। संतुष्टता का डैश सर्व प्राप्तियां है, उत्तर पहला ऑप्शन बीज बीज, परिणाम परिणाम, फल फल, आशीर्वाद आशीर्वाद। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है। संतुष्ट कौन रह सकता है? जिसे सब मिला है, जिसे मिला ही नहीं है वो कैसे संतुष्ट रहेगा? जिसके जेब भी खाली है तृप्ति कैसी होगी? और असंतुष्टता का बीज क्या है? स्थूल या सूक्ष्म अप्राप्ति। दूसरों को देखते ही पहला संकल्प आता है कि ये मुझे कब मिलेगा, इसकी ये बैग बहुत अच्छी है, हमारे पास ये बैग अब तक क्यों नहीं, ये शॉल तो बहुत ही अच्छी दिख रही है, ये मुझे कब मिलेगी? ऐसी शॉल तो हमने देखी ही नहीं, वो जाली जाली वाली। ये स्वेटर बहुत अच्छा है आशीष भाई, कहाँ से लाया, एक्स्ट्रा है क्या? और ये टोपी कौन सी है, ये तो यहाँ मिलती नहीं है कहाँ से मंगाई, अभी हमें भी गिफ्ट दिया करो। दूसरों की चीजों में, वस्तुओं में क्या होता है, आंख डूबती है, ये चश्मा कहाँ से बनवाया, और ये मफलर जो पहने हो निखिलेश भाई, एक्स्ट्रा कोई है क्या एक? ठंडी तो हमको भी लगती है। आंखों में अनासक्त भाव, वैराग्य, इस संसार की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए और मिल भी जाए तो वो मुझे तृप्त नहीं कर सकती। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, व्यर्थ है सब, सब कुछ व्यर्थ है। तीसरा प्रश्न, संतुष्टता की निशानी, वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे, उनके मन और तन से सदा अप्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। क्यों? अरे संतुष्टता की निशानी है मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट रहेंगे, गलत है। उनके मन और तन से सदा अप्रसन्नता की लहर दिखाई देगी, तो उत्तर है गलत। डैश अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष दृष्टि वृत्ति वाले, डैश अर्थात सदा निस्वार्थ, उत्तर है वशीभूत अर्थात भोलानाथ अर्थात संपूर्ण निर्विकारी अर्थात या प्रसन्नचित अर्थात, उत्तर है प्रसन्नचित अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष दृष्टि वृत्ति वाले। ये भी एक आदत ही है कि हमारे जीवन में जो भी असफलताएं आती है उनका दोष हम दूसरों पर मढ़ते हैं, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। उत्तर है प्रसन्नचित्त। पांचवा प्रश्न, संगम युग की विशेषता डैश है और डैश की निशानी प्रसन्नता है। उत्तर, मौज भोज। उत्तर, योग भोग। संगम युग की विशेषता योग है और भोग की निशानी प्रसन्नता है। तीसरा उत्तर, प्रसन्नता पवित्रता पवित्रता। और चौथा उत्तर, संतुष्टता संतुष्टता। संगम युग की विशेषता डैश है और डैश की निशानी प्रसन्नता है, संतुष्टता संतुष्टता। संगम युग की विशेषता क्या है? संतुष्टता। क्योंकि संसार जिसे प्राप्ति कहता है हमारे लिए वो प्राप्ति नहीं है, संसार जिसे कहता है ये मिल गया हमारे लिए वो मिलना नहीं है। हमारे लिए जो प्राप्ति है वो संसार के लिए अप्राप्ति है, और हमारे संसार की जो प्राप्ति है वो हमारे लिए अप्राप्ति है। संसार में बहुत कुछ मिल गया, नाम मिल गया, शान मिल गया, संपत्ति मिल गई, पद मिल गई, पद मिल गया, हमारे लिए वो सब क्या है? उससे आध्यात्मिक उन्नति होगी क्या? बहुत बड़ा कुछ बना दिया, कोई फैक्ट्री खोल दी, हम क्या कर रहे हैं उससे? क्या उससे आत्मिक उन्नति होगी? उत्तर है संतुष्टता संतुष्टता। छठवां प्रश्न, संतुष्टता नहीं प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का डैश नहीं लिया। उत्तर है रस, उत्तर है कमीशन, उत्तर है सुख, उत्तर है ऑप्शन है लाभ। लाभ, संतुष्ट नहीं प्रसन्न नहीं तो ब्राह्मण बनने का फायदा ही क्या? अब ये सही मिलन करें, ये जोड़ी जोड़ना है। ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी प्रसन्नता संतुष्टता, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता संतुष्टता, क्या है दोनों में से? ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी उत्तर संतुष्टता या प्रसन्नता? संतुष्टता। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता। पर्सनैलिटी और कैरेक्टर में क्या अंतर है कौन बताएगा? व्यक्तित्व और चरित्र, ये दो शब्द है, एक है पर्सनैलिटी एक है कैरेक्टर, एक है व्यक्तित्व एक है चरित्र। पर्सनैलिटी बाहर है और कैरेक्टर अंदर है, राइट? एक ये परिभाषा हो सकती है। और व्यक्तित्व वो जो दूसरों को हम दिखाते हैं, जो दिखाई देता है दूर से, बाहर से क्या पहना है, स्मार्ट कितना है, चेहरा काला है गोरा है, बाल लंबे हैं छोटे हैं, चश्मा कैसा है, पर्सनैलिटी कपड़े कैसे हैं, ये पर्सनैलिटी है। चरित्र भीतर है। अब्राहम लिंकन ने कहा है पर्सनैलिटी छाया की तरह है और कैरेक्टर वो झाड़ है। यदि कैरेक्टर झाड़ है तो उसकी जो परछाई है वो है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी अलग है और कैरेक्टर अलग है। डिक्शनरी में दोनों का मीनिंग सेम दिया है वो, और अध्यात्म में अर्थ बदलते हैं। पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती है और भी, साइकोलॉजी के हिसाब से। अगला प्रश्न, सही है या गलत है ये बताना है, ध्यान से सुनो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहा है, दे दिया, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, क्यों सही है? अनुभव करो और दूसरों को कराओ। जो कोर्स कराते हैं वो लक्ष्य केवल ये ना रखे कि केवल ज्ञान बांटना है। ज्ञान तो इंटरनेट से मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन बहुत है, और हमारा कोर्स कराना अर्थात ये नहीं है कि तुम आत्मा हो, परमात्मा वो है, ये तीन लोक है और ये सृष्टि चक्र है, ये सब सूचनाएं हैं, ज्ञान नहीं। अभी विनाश सामने खड़ा है, ये ब्रह्मा है, इसके तन में भगवान आते हैं, ये सब क्या है? आत्मा यहाँ रहती है, मन बुद्धि संस्कार से बनी है, ये उसकी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, फिर उसके उदाहरण, फिर तीन लोक, फिर वो परमात्मा, फिर शिव और शंकर में अंतर, ये सारी सूचनाएं हैं। सूचनाएं ज्ञान नहीं, ज्ञान अर्थात सूचना प्लस अनुभव। ज्यादा ज्ञान सुनाएंगे तो क्या होगा? तर्क वितर्क करेंगे, लड़ाई करेंगे, आर्गुमेंट्स करेंगे कि तुमने ये सृष्टि चक्र के तुम्हारे झाड़ में हमारा जैन धर्म दिखाया नहीं, क्यों बताओ? और हम कहते हैं वो पीछे है, ऐसे उत्तर काम नहीं करेंगे। फिर वो पूछते हैं डायनासोर कहाँ चले गए, वो कहते हैं हम पहले कोर्स सुन लो फिर बाद में बताएंगे। वो कहते हैं 5,000 साल ही क्यों 6,000 क्यों नहीं है, 7,000 क्यों नहीं है? हम कहते हैं पहले सुन लो हमारी बात फिर हम बताएंगे तुमको। और वो पूछते हैं कि ये सारे शास्त्र झूठे हैं और तुम ही एक महान हो? हम कहते हैं पहले सुन तो लो। और तब तक कोर्स होते होते बेचारा वो भूल जाता है और हम कहते हैं हम सफल हुए, और वो प्रश्न उसकी आत्मा में गड़ जाता है, छिप जाता है, दब जाता है, और फिर वो जीवन भर निकलते रहता है। जिसकी यात्रा निश्चय से चालू हुई है वो लड़खड़ाते ही रहता है। यात्रा हमेशा संदेह से चालू हो, संशय से चालू हो, डाउट से चालू हो, सस्पिशन से चालू हो, ताकि वो डाउट उसे धीरे धीरे निश्चय तक पहुंचाए। पहले दिन सारा निश्चय कर लिया तो फिर डाउट करते रहते हैं जीवन भर। लेट द जर्नी बिगिन विथ डाउट। ये क्यों, वो क्यों, इतना जल्दी क्यों स्वीकार कर लेते हो? हमने बताया और तुमने स्वीकार कर लिया, क्यों मानते हो? डाउट करो, आत्मा यहां है, क्यों यहां क्यों नहीं है? मानो यहां है या पूरे शरीर में व्यापक है। लेट द जर्नी बिगिन विद डाउट सो दैट इट एंड्स इन फेथ। अगला प्रश्न, संतुष्टता का बीज डैश है, यह पहले भी आया है, प्राप्ति है। लास्ट प्रश्न, सेवा में हद डाल देते हो क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित डैश नहीं प्राप्त होता। उत्तर है भोजन, दूसरा ऑप्शन साधन, तीसरा ऑप्शन वरदान, चौथा ऑप्शन फल। फल, सेवा में हद डाल देते इसलिए हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। तो आज हमने क्या क्या देखा? सबसे पहला देखा हमें क्या करना है, अध्ययन, हमें क्या करना है, स्टडी, सेल्फ स्टडी। दूसरा देखा बाबा के अमृत वेले के महावाक्य और उसमें से ये 5 सूत्र, देखना, सुनना, चलना, खाना और सोना। फिर हमने देखा 2 होमवर्क। पहला होमवर्क है अपने बिस्तर का ही फोटो बना के, फोटो खींच के या ड्राइंग निकाल कर, ड्राइंग में आप अपना भी चित्र निकाल सकते हो, उसके लिए कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं। सोए हुए बाप की याद में, और नीचे लिखेंगे आई स्लीप इन गॉड्स लैप, मैं बाप परमात्मा की गोद में सोया हुआ। दूसरा होमवर्क है आज का फूड मंत्रा राइटिंग, हर निवाले में बाप की याद समाई हुई है, उसको कितनी बार लिखेंगे, 10 times। तो ये 2 होमवर्क और फिर हमने देखे 10 प्रश्न। तो 10 प्रश्न अर्थात 10 महावाक्य, इन महावाक्यों पर चिंतन करना है, मनन करना है, डिस्कशन करना है, चर्चा करनी है, लिखने हैं, ताकि वो भीतर भीतर समा जाए। तो आज की कविता क्या है, कविता का इफेक्ट अग्निपथ, और कल की कविता, कल की कविता, कल यहाँ कौन कौन रहने वाला है बहनों की तरफ से? आप है, कविता बनाएंगे एक? तो आपकी कविता का टॉपिक है वाणी में विष, वाणी में विश। पीछे किसने हाथ खड़ा किया था? सेंटर की बहनें कोई है जो कल रुकने वाली है, उनको देंगे टॉपिक। कोई है? नहीं है, आज ही जा रहे। हाँ पर वो यहाँ चाहिए ना, वो नहीं तो कहेंगे हमको तो पता ही नहीं, हमको नहीं दिया गया। पीछे किसने हाथ खड़ा किया? किया था किसी ने। हाँ तो आप एक टॉपिक दे रहे हैं आपको, शिव रस। शिव रस तो कल और परसों का ये। और यहाँ किसका नहीं हुआ है? बाद में आनंद गंगा।
ओम शांति। आज की कविता इस रूहानी मार्ग पर चलने वाले हर एक साधक तथा अग्निवीरों को और इन रूहानी साधकों में शीर्षतम साधक हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय राजयोगी डॉक्टर सचिन भाई जी को प्रेम पूर्वक सादर समर्पित। आज की कविता का जो शीर्षक है अग्निपथ। यह गुप्त साधना का है पथ, यह गुप्त साधना का है पथ, हर श्वास यहाँ अग्नि की कसौटी, हर श्वास यहाँ अग्नि की कसौटी, कभी तपस्या कभी संघर्ष, कभी तपस्या कभी संघर्ष, तो कभी आत्मा की मौन ज्योति, तो कभी आत्मा की मौन ज्योति। अग्नि पथ पर कदम बढ़ाना है, अग्नि पथ पर कदम बढ़ाना है, भय और मोह सब त्याग जाना है, कांटे चुभे या आंधिया उठे, कांटे चुभे या आंधिया उठे, सत की इस ज्योति को हर दिल में जगाना है, हर दिल में जगाना है। यह योग अग्नि नहीं केवल जलाती, यह योग अग्नि नहीं केवल जलाती, यह शुद्ध भी करती हर कण कण, जो भीतर के अंधकार को मिटा दे, है यही अग्नि पथ का अमर प्रण, है यही अग्नि पथ का अमर प्रण। यह अग्नि करती वासनाओं को भस्म, यह अग्नि करती वासनाओं को भस्म, यह अग्नि करती अहंकार का अंत। जो इस मार्ग पर चलता दृढ़ता से, जो इस मार्ग पर चलता दृढ़ता से, वह पा लेता परमात्मा का अंत, वह पा लेता परमात्मा का अंत। अग्नि पथ पर तू नहीं अकेला, अग्नि पथ पर तू नहीं अकेला, बाप दादा स्वयं संग संग चलते, हर आंसू को मोती बनाते, हर पीड़ा को सहज ही हरते, हर पीड़ा को सहज ही हरते। यह पथ कठिन है, यह पथ कठिन है, पर है अमर, यह मुक्ति का सच्चा द्वार, अग्नि पथ ही साधक की पहचान है, यही ब्राह्मण जीवन का आधार, यही ब्राह्मण जीवन का आधार। और लास्ट के चार पंक्तियाँ, चल निडर हो, चल निडर हो ओ अग्निवीर, अग्नि पथ ही है तेरी तकदीर, चल निडर हो ओ अग्निवीर, अग्नि पथ ही है तेरी तकदीर, जहाँ अंत में न कोई दुख न भय, जहाँ अंत में न कोई दुख न भय, केवल परमात्मा का अमर आश्रय, केवल परमात्मा का अमर आश्रय। ओम शांति।
मन मना भव शिव बाबा सततम्, निराकार तेजोमय पावनम्, प्रभात काले स्मरणं दिव्यम्, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। थामले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरे, थामले तप की मशाले फाड़ दे आलस की काली चादर निद्रा से तप काना कर अनादर सपनों का विष पीने से कर इनकार रूहानी योद्धा कर अब ललकार न सो न लेट हो जा तैयार उठ चल कर तम से दुनिया बदलेगी तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी उठ तपस्वी तूठे तो विश्व सवरेगा अमृत वेले की है पुकार ना रुक ना जो